ओम शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली योगी आत्माएं हैं। कैसे? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में पलते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है, और वो केवल योगी आत्माओं को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नयनों में भी स्वयं परमात्मा नूर बनकर सदा रहते हैं। इसलिए परमात्मा के नयनों का नूर योगी आत्माएं बनते हैं, और वही जहान के नूर भी बनते हैं। इस संसार में सबसे चतुर आत्माएं चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे कौन हैं? योगी आत्माएं हैं। उनके पास दो कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती है। पहली कला, वो माया दुश्मन के राज में रहकर हमेशा दुश्मन के वार से सदा सेफ रखते हैं स्वयं को। ये चतुराई उनके पास होती है। माया दुश्मन उनको धोखा नहीं दे सकती है। दूसरी कला, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उससे ठिकाने पर वो अपने मन और बुद्धि को लगाते हैं और हर एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं और स्वयं को माला माल करते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। जितनी महिमा भगवान की शास्त्रों में की गई है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार की पालना करते हैं पालनहार बनकर, ऐसे योगी आत्माएं भी मास्टर पालनहार कहलाते हैं। वो परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं। इसलिए वो मास्टर भगवान भी कहलाते हैं। तो संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें अनेक वरदान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? हाँ जी, हाँ, कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसे योगी भाव का वरदान जिनको प्राप्त होता है, उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिल जाते हैं। तो इसलिए योगी भाव का वरदान मुझे लेकर ही रहना है, चाहे उसके लिए कितनी भी साधना मुझे करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, करके रहेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा वरदान भगवान से मैंने लेकर ही रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा सदा रहे। बच्चे हम सभी हैं, सबको वर्षा मिलता है, लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। वो भगवान का दिल जीत लेते हैं तो भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं, इसलिए वह संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। तो इसलिए योगी भव का वरदान श्रेष्ठ वरदान है। तो ऐसा वरदान अगर हमें प्राप्त करना है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कहते हैं, बाबा कहते हैं, योगी तू बच्चों के साथ, मुझे ज्ञानी तू बच्चे भी प्यारे लगते हैं। योगी भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञानी तू आत्मा बनना जरूरी है। बाबा की जो मुरली है, उस मुरली का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना और उस पर मनन चिंतन गहराई से करना, परिणाम स्वरूप हमारी मन और बुद्धि बहुत दिव्य और दूरंदेशी बनती है, जिससे योगाभ्यास हमें सरल हो जाता है। क्योंकि योगाभ्यास में बुद्धि का मेन रोल, मेजर रोल होता है। इसलिए जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान के गुह्य राज हम समझते हैं, और बुद्धि हमारी सदा लाइट रहती है, और बाबा से माइट लेने की शक्तियां लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना ज्ञान की गहराई बढ़ती है, उतना योग की गहराई स्वतः ही बढ़ती जाती है। ज्ञान है थ्योरी, योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। तो बाबा हमें इशारा देते हैं, नॉलेजफुल बनो। तो जो फुल नॉलेजफुल बनते हैं, वही निरंतर योगी बाबा के बच्चे बनते हैं। क्योंकि मुरली में बाबा योगाभ्यास में कैसे निरंतर स्थित हो, उससे के लिए बहुत सुंदर युक्तियां बातें हमें बताते रहते हैं। इसलिए ज्ञान बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बैठना जरूरी है। ज्ञान की गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना जरूरी है। तो हमें योगाभ्यास का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात है, परिपक्व योग की स्थिति बनाने के लिए हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करते जाना है। बाबा मुरली में स्पष्ट कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं। ये तीनों बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो आत्मा हमें अच्छी तरह से समझना है और उसको अनुभव करते जाना है। जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, उतना बाबा की याद भी सहज, नेचुरल और निरंतर रहती है। इसलिए जब भी हम एकांत में बैठते हैं अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत पक्का करते जाना है और उसमें भी पूर्णतया आत्म अभिमानी बनकर मुझे रहना है। तो पूर्णतया आत्म अभिमानी बनना अर्थात पूर्णतया बाबा की याद में खो जाना, क्योंकि हमें अपने देह से बहुत प्यार होता है। तो जितना देह में रहते हुए देह से न्यारे रहते हैं उतना ही बाबा के प्यारे बनकर हम रहते हैं। इसलिए विदेही स्थिति का अभ्यास हम बढ़ाते जाएं। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बुद्धि हमारी बाबा के तरफ जाने लगती है और बाबा की याद में टिकने लगती है और बहुत अच्छी तरह से बुद्धि की तार बाबा के साथ में जुटी रहती है। इसलिए गुप्त ही गुप्त विदेही स्थिति का अभ्यास हम करते रहें। दूसरी बात, योग की परिपक्व स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है योगी आत्माएं हमेशा स्वमानधारी होते हैं, स्वमान के सिंहासन पर वो बैठे रहते हैं। इसलिए उनकी मन और बुद्धि हमेशा नशे में मस्त रहती है और हल्की फुल्की होती है और एक अलौकिक मस्ती चढ़ने से बाबा के तरफ मन बुद्धि जाती है और बाबा के पास हमें बिठा देती है। अगर स्वमान में हम स्थित नहीं रहते हैं, साधारण आत्मा स्वयं को समझते हैं, फिर भी हमारा मन और बुद्धि इसी साकारी दुनिया में भटकता रहता है। लेकिन आत्मा समझते ही देह से न्यारे हो जाते हैं और बुद्धि बाबा के तरफ स्वतः ही जाने लगती है। इसलिए गुप्त ही गुप्त आत्मा का अभ्यास करते रहें और स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ते रहें, क्योंकि कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम रहते हैं। ईश्वरीय नशे में अलौकिक मस्ती में जब हम मस्त रहते हैं तो ये साकारी दुनिया के कलयुगी दुनिया के माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो माया के प्रभाव से भी हम न्यारे रहते हैं और दुनिया के आकर्षण से भी हम न्यारे रहते हैं। इसलिए सदा स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहें। अगर हम बहुत अच्छी तरह से योग की स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट ही है स्वमान में स्थित रहने का गुप्त अभ्यास करते रहना। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी दशा रहता था, मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूँ, तो बाबा को बेहद कापारी खुशी रहती थी और बाबा की याद में निरंतर सहज रीति से रहते थे। तो इसलिए आवश्यकता है नारायणी नशे की अनुभूति करने के लिए हमें सिंहासन पर स्वमान के जरूर बैठे रहना है, समझा। और हम वैसे भी रॉयल आत्माएं हैं, इस सभा में जो भी बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, तो उस रॉयल्टी को भी हमें धारण करना है तो उसके लिए स्वमान के सिंहासन पर बैठना बहुत जरूरी है। हम सारा दिन उस पर बैठने का पुरुषार्थ करें। नहीं, होता क्या है, माया उस सिंहासन से उतारने का प्रयास करती है और बाबा हमें उस सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करते हैं। माया हटाने का पुरुषार्थ करती है, बाबा बिठाने का पुरुषार्थ करते हैं, और हम दोनों के बीच में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है, तब हमें बहुत सुंदर योग की स्थिति हमारी बनती जाती है। दूसरी बात, योगी आत्माएं हर कदम में, संकल्प रूपी कदम में अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कह दिया है, एक सेकंड भी मुझे याद करेंगे तो आपको अनेक पद्मों की प्राप्ति होगी। सचमुच होती है भाई, है जी? अनेक पद्मों की प्राप्ति माना बहुत प्राप्ति, बेहद की प्राप्ति। कैसे होती है बताइए, योग से? एक सेकंड बाबा को याद करते इतनी प्राप्ति हमें होती है, हाँ जी? दुनिया की प्राप्ति हमें दिखाई देती है इसलिए उसके पीछे भागते हैं। अब ये प्राप्ति हमें दिखाई नहीं देती है इसलिए हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो प्राप्ति पद्मों की कैसे होती है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो संकल्प बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो संकल्प के माध्यम से हमें शक्तियां मिलती है। मनमना भव का मंत्र का जाप करते हैं अर्थात संकल्प बाबा के तरफ जुड़ जाते हैं तो हमें शक्तियां मिलती है, और शक्तियां मिलने से क्या होता है, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मी इंद्रियों पर अनुशासन करने की और नियंत्रण करने की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, और राजा महाराजा बनने का आधार ही है रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हमारे पास होना। जितनी जिसके पास रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर जास्ती होती है उतना वो सतयुग में महाराजा, विश्व महाराजा का, राजा का टाइटल प्राप्त करता है। इसलिए जब हम योग करते हैं संगम योग में बहुत शक्तियां प्राप्त करते हैं और शक्तियों के खजानों से भरपूर रहते हैं, और परम धाम में बाबा के पास वापस जाते हैं, थोड़ी रेस्ट लेते हैं, और जैसे सतयुग के आद में हम आते हैं, आते ही हमें बहुत रॉयल परिवार में जन्म मिलता है, राजा महाराजा के घर में जन्म मिलता है, जहां आते ही बिल्कुल बेहद की प्राप्तियां हमें होती है। क्या सोना, क्या हीरे के मोती के महल, बिल्कुल बेहिसाब प्राप्तियां हमें होती है। ये कौन देता है भाई, कब देता है, किस रूप में देता है, पूछो अपने से। जो संगम योग में योग नहीं करते हैं, जिनके पास ये दो शक्तियां नहीं होती है, नियंत्रण करने की शक्ति और अनुशासन करने की शक्ति, वो सतयुग में आते ही पहले ही जन्म में साधारण पद प्राप्त करते हैं, नौकर चाकर प्रजा के पास जाते हैं, जहां बहुत थोड़ी सी उनको प्राप्तियां होती है, खजाने मिलते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि एक एक सेकंड में बाबा को याद करने से हमें अनेक पद्मों की प्राप्ति होती है। अब इसमें हमें लोभी बनना है। बाबा कहते दुनिया का प्राप्तियों में लोभ नहीं रखना है, क्योंकि वो तो यही रहनी है, कितना भी कमाओ वो यही रहनी है, लेकिन ये अविनाशी कमाई साथ में चलती है। इसलिए मेरे पास ये अविनाशी कमाई बहुत अच्छी तरह से जमा होती रहे, यही तात सदा लगी रहे, और इसीलिए बाबा के से हमारी बुद्धि रूपी तार सदा जुटाकर रखने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है, समझा? तो बहुत अच्छी तरह से हमें योग 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 को योग क्यों कहते हैं भाई बताओ, दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं है जी। योग उल्टा क्या है, गयो, आंखों से देखते चले गए बाबा के पास, क्योंकि हम देखते हैं योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनकी तीसरी आंख अपने इष्ट की याद में, परमात्मा की याद में दूर परम धाम में खोई रहती है, इसलिए उनकी आंखें आधी खुली दिखाते हैं। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है वो यहाँ नहीं है, वो अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में है, खोए हुए हैं, उनकी आंखें बताती है, है ना? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद को याद क्यों कहते हैं बताओ? हैं जी, याद उल्टा क्या है? दया। जितना बाबा से खजाने प्राप्त करते हैं माला माल हो जाते हैं, अर्थात हम स्वयं पर दया करते हैं। दया के सागर के बच्चे हैं, और खुद पर भी दया नहीं करेंगे तो औरों पर क्या दया करेंगे भाई? इसलिए जितना बाबा की याद में हम रहते हैं उतना खजाने प्राप्त करते हैं, और खुद पर हम दया करते हैं, स्वयं को भरपूर रखते हैं, ठीक है ना? तो कहते हैं योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा क्यों कहते हैं भाई? ज्ञानी आप, ज्ञान कितना भी आप लोगों को सुनाओ, उससे कुछ थोड़ी सी प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन योगी जीवन इस सबसे प्यारा जीवन कहलाता है। जैसे डॉक्टर होता है, सारा दिन उठते बैठते अपना पेशेंट है, दवाइयां है, दवा खाना है, उसी में खोया रहता है, तैसे योगी आत्माएं योगेश्वर बाप की याद में सदा खोए रहते हैं, उनका जीवन योग में हो जाता है, समझा? और सबसे प्यारा प्यारा जीवन ये क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है, और जब दोनों चीजों का जब संयोग होता है तो दिव्य गुणों की धारणा हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होती है। कमियां एक तरफ निकलती रहती है और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती रहती है, उससे क्या होता है, आत्मा सुंदर बनने लगती है, और दिव्य गुणों के श्रृंगार से हमारा व्यवहार भी बहुत सुखदायी होता है, सबके साथ बड़े प्यार से रहते हैं, तो हमें अपना भी जीवन अच्छा लगता है और दूसरों को हमारा जीवन भी अच्छा लगता है, क्योंकि दिव्य गुणों के श्रृंगार से मस्त रहते हैं और अति इंद्रिय सुख के बाबा की याद में रहते हैं तो परम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इस जीवन का एक एक पल हम अति इंद्रिय सुख में अनुभव करते हैं और जीवन भी हमारा सुखदायी होता है, सबके साथ व्यवहार भी हमारा बहुत अच्छी तरह से रहता है, इसलिए स्वयं को भी ये जीवन प्यारा लगता है और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी यो ये जीवन प्यारा लगता है। बाबा मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कभी कभी सवाल उठता है क्यों बाबा ऐसा कहते हैं, क्या जरूरत है बाबा को याद करने की? मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्या राज है इसके पीछे? बोलिए, क्यों जरूरत है बाबा को याद करने की? हाँ, सबसे पहली बात, एवर प्योर, परम पवित्र, सदा पवित्र, पवित्रता के सागर केवल एक बाबा ही है, ठीक है? दूसरी बात, केवल शक्तियों के सागर बाबा ही है और कोई नहीं है संसार में। जब हम बाबा को याद करते हैं तो ही आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। जब हम आत्माओं को याद करते हैं ना कैसी भी आत्मा हो, महान आत्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, जब आत्मा को याद करते हैं तो ये सिद्धांत है, शक्तियां जो है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ प्रवाहित होती है ऑटोमेटिक। एक ही बाबा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, बाकी इस संसार में कोई भी स्पिरिचुअल पावर हाउस आत्मा नहीं है। जैसे बुद्धि की तार जुड़ जाती है, आत्मा में शक्ति ऑटोमेटिक आने लगती है। सोर्स आध्यात्मिक शक्तियों के केवल एक बाबा ही है, और बाबा पवित्र, परम पवित्र होने के कारण जब हम उनको याद करते हैं तो पतित से हम पावन बनते हैं। सारी आत्माएं पतित बनती है, एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो पतित बनती नहीं है। एक ही बाबा जो है परम पवित्र है और पतित को पावन बनाने वाला है। इसलिए हमें बाबा को याद करना है, उनको याद करने से ही हमें अथाह प्राप्तियां होती हैं। और दूसरी बात, बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दो तो भी नहीं कुटते हैं। इतने खजाने हैं किसी के पास? किसी के पास नहीं। वो खजाने भी हमने प्राप्त करने हैं। तो ये सभी बातें स्पष्ट हमें बताती है कि बाबा की याद में रहना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए बाबा से कनेक्शन सदा जोड़ कर रहे, चलते फिरते ऊंटते बैठते बस बाबा 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 रटते रहे, है ना? हमारी रेस किस में है भाई? हम सभी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और चारों सब्जेक्ट में हमारी रेस किस में है बताइए? हाँ जी, योग में है, ज्ञान में नहीं। हाँ जी, हमारी रेस केवल योग में है। इतना बढ़िया भाषण कौन करते कोई देखने वाला नहीं है, धारणा तो सभी करते, कितनी अच्छी सेवा करते हैं वो भी कोई देखने वाला नहीं। प्रजा बनेंगे, प्रजा तो राम की भी 33 करोड़ होती है, लक्ष्मी नारायण की भी होती है प्रजा, वो क्वालिटी होती है, वो तो क्वांटिटी होती है। तो सेवा कितना भी करो, धारणा कितनी भी अच्छी तरह से करो, ज्ञान कितना भी सुनाओ, लेकिन सबसे मुख्य बात कौन सी है? योग। क्यों? ज्ञान जितना बुद्धि में बैठता है योग बढ़ता है, जितनी दिव्य गुणों की धारणा करते हैं योग सरल होता है, जितनी हम सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं, उससे योग हमारा और आगे बढ़ता है। हमारी रेस योग में है। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे वो होंगे योगी आत्माएं। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी के जो चैंपियंस होंगे वो योगी आत्माएं होगी। इसलिए इस रेस में मुझे केवल दौड़ना नहीं है, केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है? विनर बनना है। रनर तो आम दुनिया है, मुझे केवल रनर नहीं बनना है लेकिन विनर बनना है। ये लक्ष्य अगर हमारा होगा तो योगाभ्यास में हमारी सदा रुचि बनी रहेगी, क्योंकि ये रेस बाबा सूक्ष्म वतन में स्पष्ट सदा देखते रहते हैं। बाबा कहते मेरे पास इतनी बड़ी टीवी है, ये रेस मैं हमेशा देखता रहता हूं। मैराथन की जो रेस होती है ना दौड़ने की, उसमें जो आगे दौड़ते हैं उनको देखकर खुशी होती है, और जो पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर क्या लगता है? दया आती है, बिचारा पीछे दौड़ रहा है, थका आ रहा है। तो ये भी मैराथन, ये भी स्पिरिचुअल रेस बाबा देखते रहते हैं। तो इस रेस में मुझे आगे रहना है ताकि बाबा देखकर मुझे खुश हो, ना मुझे पीछे रहना है कि बाबा कहें कि देखो मेरा बच्चा बेचारा पीछे दौड़ रहा है। तो ये रेस का सीन अगर सामने आप रखेंगे तो कभी भी आपके पास अलबेलापन नहीं आ सकता है। ये सभी आत्माओं रूपी रेस के घोड़े हैं। दुनिया में रेस के जो घोड़े होते हैं उसका सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं भाई? मालिक करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार होता है, ये घोड़ा मुझे जिताकर रेस जिताकर देगा, इसलिए मुंह मांगे दाम देता है। लेकिन रेस के घोड़े की क्वालिटी क्या होती है? हैं जी, बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट जो घोड़ा होता है वो रेस का घोड़ा होता है। उसका सिलेक्शन हजारों में होता है। जितना एक्टिव और जितना अलर्ट, जितना स्मार्ट, उसका सिलेक्शन करते हैं रेस के लिए। तो हमें भी बहुत एक्टिव और अलर्ट रहना है और बहुत अच्छी तरह से इस रेस में अगर आगे दौड़ना है तो एक बात पर हमें ध्यान देना है। कौन सी बात? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों के बाजू में यहां ऐसा पट्टी बांधते हैं ताकि वो इधर उधर न देखे। तो हमें भी इस रेस में दौड़ना है तेजी से तो क्या करना होगा? साइड सीन देखने में हमारी रुचि ना हो। साइड सीन देखना अर्थात अन्य आत्माओं को देखना, साइड सीन देखना अर्थात दुनिया के समाचार की लेन देन में रुचि रखना, तो ये सब बातें हमारे लक्ष्य से थोड़ा सा हमें दूर रखती है और रेस में हमारी गति धीमी हो जाती है। इसलिए हमें साइट सीन देखने में रुचि नहीं रखनी है। देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को और मुझे, मैं कैसा हूं बाबा कैसे है, मैं कैसा हूं बाबा कैसे, बस किसी तीसरे व्यक्ति को हमने देखना ही नहीं है। तो इस रेस में आप सदा आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, योगी ही प्रयोगी बनता है और प्रयोगी ही उपयोगी बनता है। बाबा कहते हैं योगाभ्यास के साथ साथ प्रयोग करते रहो। जो भी हम शक्तियां बाबा से लेते हैं, जो भी खजाने प्राप्त करते हैं, उनका हमें यूज करना है, प्रयोग करते रहना है, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है। उससे क्या होगा, कुछ नए नए अनुभव हमारे पास जमा हो सकते हैं जो हमारे स्थिति को परिपक्व बनाने में मदद कर सकते हैं। तो योगी से हमें प्रयोगी बनना है और जो प्रयोगी होते हैं वो उपयोगी बनते हैं, अर्थात आत्माओं को बाबा से शांति शक्ति लेते हैं और अनेक आत्माओं को देते हैं और उनको मदद करते रहते हैं, उनके उपयोग में आते हैं। तो इसलिए योगी आत्माएं प्रयोगी भी बनते हैं और उपयोगी भी बनते हैं। और दूसरी बात है, हमें घर वापस जाने के पहले 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। लेने हैं ना भाई? कौन से? मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। तीनों सर्टिफिकेट लेकर ही हमने घर जाना है। ये तीनों सर्टिफिकेट योगी आत्माओं को बहुत सहज मिल जाते हैं। आप देखना, कितना भी ज्ञान लोगों को सुनाओ, कितनी भी सेवा आप करो, घोड़े की तरह भागते रहो, समझा, लेकिन योग की स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो स्वयं को प्यारे नहीं लगोगे, स्वयं प्रिय अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी योग की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो आप खुद को पसंद कर लेते हैं। दूसरी बात, योगी आत्माएं हमेशा अनेक आत्माओं को सहयोग देते रहते हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन का दान करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं, तो लोग भी ऐसी आत्माओं को पसंद करते हैं, उनको होट देते हैं। और तीसरा सर्टिफिकेट, परम धाम में बाबा बैठे बैठे देखते हैं, ये मेरा योगी बच्चा, मैं जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान देता हूं उस कोटि के ज्ञान रत्नों का दान भी करता है और उसको जीवन में लाकर बहुत सुंदर अनुभव करता भी है और अनेकों को कराता भी है, इसलिए प्रभु जी ऊपर बैठकर उसको अपने दिल में स्थान देते हैं, अपने दिल में बिठा देते। तालियां तो बजाओ भाई। भगवान के दिल में स्थान बनाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको सारी दुनिया याद करती है वो मुझे याद करे और वो अपने दिल में मुझे बिठाए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बिठाएगा किसको? जो वफादार होगा, जो फरमानदार होगा, आज्ञाकारी होगा। और योगी जितना बाबा के प्यार में खोए रहेंगे ना, उतना बाबा का प्यार भी हमें मिलेगा। योग माना क्या? भगवान से प्यार करना, इसी को तो योग कहते हैं। जितना हम बाबा को प्यार करते हैं उतना फिर बाबा हमारे से करते हैं, हाँ जी। और बहुत प्यारी चीज कहाँ होती है, कहाँ बसती है? हाँ, माँ कहती है मेरा बच्चा तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे आंखों का तारा है। तो जो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, वो बाबा के दिल तक पर बैठने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उससे बढ़कर और कोई दुनिया में प्राप्ति नहीं है। लेकिन बाबा कहते मैं अपने दिल तख्त पर तो आपको बिठा देता हूं, लेकिन एक कंडीशन पर। भाई कौन सी कंडीशन है? अगर किसी दूसरे को अपने दिल पे बिठा दिया तो मैं दिल से उतर जाऊंगा, हैं जी। बाबा और मैं अपने दिल तख्त पर हूं, लेकिन कोई तीसरा बैठ जाएगा तो बाबा उतर जाएगा। बाबा कहते हैं आपके तीसरे नेत्र में मैं जरूर बैठता हूं, लेकिन कोई तीसरा अगर बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमें संगम माना परमात्मा के संग में रहना, संगम माना अपने दिल रूपी तख्त पर भगवान को बिठाना। इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी हमारा नजदीक वाला हो, हमें बाबा को ही दिल तख्त पर बिठाना है। एक बाबा से ही जिगरी प्यार, हड्डी प्यार करना है, तो फिर बाबा भी हमें करेंगे, है ना भाई। तो तीनों सर्टिफिकेट मिल गए तो बहुत खुशी में हम झूमते रहते हैं। और दूसरी बात है, परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी बताइए, हाँ जी, हमारे चेहरे और चलन से। हाँ जी, बाबा दिखाई नहीं देता है, बाबा की शक्तियां भी दिखाई नहीं देती है। अब सारे संसार को कैसे पता चलेगा कि भगवान धरती पर आया हुआ है और वो सारा संसार का क्रिएटर डायरेक्टर है? कैसा पता चलेगा? सबको पता चलना जरूर है, लेकिन कैसे चलेगा? बहुत सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है, बहुत सुंदर कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है, बहुत सुंदर रचना को लोग देखेंगे तो वो रचनाकार की याद आएगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा भाई, तालियां तो बजाओ। दुनिया वाली सोचेंगे ये चलते फिरते देवियां हैं, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये चलती फिरती देवताएं हैं, इतने अच्छी रचना है तो इसका रचयिता कैसा होगा? तो योगी आत्माओं के माध्यम से परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी, उनके द्वारा ऑटोमेटिक सबका ध्यान परमात्मा के तरफ जाएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। और इस प्रत्यक्षता के कार्य में जो अहम भूमिका निभाएंगे, बहुत मददगार बनेंगे, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना? क्योंकि क्या है, मेरे दिल में अगर बाबा होगा तो मेरे नैनों से, मेरे सूरज से बाबा का ही साक्षात्कार होगा, है ना? इसलिए हमें वो चांस जरूर लेना है, अंतिम समय बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में हमें मददगार जरूर बनना है। हम जब योग करते हैं, योग करते समय कभी कभी किसी के मन में एक संकल्प आता है, थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं बाबा कितना दूर है, परम धाम कितना दूर है, और परम धाम में भी कौन से कोने में बाबा बिंदु बैठा है। मैं तो बाबा का एक नया बच्चा हूँ, साधारण बच्चा हूँ, मैं याद करता तो हूँ, करती तो हूँ, लेकिन मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं, कभी कभी ये मन में संशय आता है आपके? सच सच बोलो, आता है? देखो ऊपर वो पीछे हाथ उठा रहे बहन जी, हाँ बताइए, और किसको आता है? देखो ये भी उठा रहे भाई साहब, हैं जी, वो भी एक बहन जी। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, 3 साल तक मेरे मन में ये संशय आता था, और उसके कारण योग में मेरी रुचि ही नहीं रहती थी। जब दीदी कहती थी योग में बैठो, लाल लाइट में बैठो, तो मुझे ऐसा लगता था क्या लाल लाइट में बैठ के कुछ मिल तो नहीं रहा है, क्या क्या करें, मैं भाग जाता था, युक्ति से कुछ सेवा का बहाना करके भाग जाता था। लेकिन मधुबन में मैं 76 में आया, और जैसा बाबा ने विधि बताई है कि स्वयं को आत्मा समझो और बुद्धि रूपी नेत्र से मुझे देखो और मन के द्वारा मन मना भव का मंत्र का जाप करो, तो वो उसी अनुसार जो है विधि अनुसार मैं बाबा को याद करता रहा और बहुत अच्छी तरह से चार्ट मेंटेन करता रहा। तो 77 में 3 मार्च को रात को 2 बजे मेडिटेशन अपने हिस्ट्री हॉल में, बाबा हम मधुबन निवासियों के साथ मिल रहे थे, बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे दादी के तन में, और मैं सामने बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, एक तरफ दीदी बैठी थी और एक तरफ प्रकाशमणि दादी जी बैठी थी। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और टोली देने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन टोली न देते हुए हाथ पीछे किया। मैं घबरा गया, क्या बात है, मैंने कौन सी ऐसी गलती की जो बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे? लेकिन बाबा ने दीदी के तरफ देखा और 2 महावाक्य उच्चारण के, बच्ची इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये 2 महावाक्य जब मैंने सुने, मुझे इतनी खुशी हुई बहन जी, दीदी इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहे हैं इसका याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। माना मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी, वो कंफर्मेशन मिल गया। अभी ये स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, इस सारा विश्व एक सिद्धांत के आधार पर चल रहा है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम यहां बैठे हुए हैं, दुनिया के कोने में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को अगर हम याद करते हैं तो हमारा संकल्प जो है उस आत्मा पर ठका करता है और वो आत्मा हमें भी याद करने लगती है। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है, बाबा मुरली में कहते हैं बांधे लिए माताएं जो हैं उनके पति मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, वो तड़प तड़प कर बाप मुझे याद करती है, भगवान देखो मुझे कितना मैं सीतम सहन कर रही हूँ आपके कारण। तो वो तड़पाने वाली याद बाबा के पास पहुंचती है तो बाबा के आंखों में आंसू आते हैं और बाबा उस बच्ची को एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं ताकि वो उस सिचुएशन को पार कर सकें। इसलिए बाबा मुरली में कहते बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि उनके याद में प्रेम की मात्रा बहुत होती है। हम जैसे योग में बैठते हैं ना, तो जैसे कि ऐसा बैठते हैं, हल्के रीति से बैठते हैं, लेकिन मांदेली माताएं जो होती है ना, उनका दिल में जिगरी प्यार बाबा के प्रति होता है, हड्डी प्यार होता है और बाबा को दिल से याद करते हैं तो बाबा के पास वो याद उसी अनुसार पहुंचती है। तो कहने का मतलब है याद को याद जरूर मिलती है, इसलिए हमें कभी भी संशय नहीं लाना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, शक है तो शक्ति नहीं। किसी भी प्रकार का शक है, डाउट है, संशय है तो बाबा से आपको शक्तियां नहीं मिलेगी। आप पूरे विश्वास के साथ बैठो और बहुत अच्छी तरह से निश्चय के साथ बैठो और बड़े प्यार से बाबा को याद करो तो जरूर बाबा से शक्तियां आपको मिलती जाएगी और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। हम कई बार आत्मा को बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करते हैं। सफल योगाभ्यास माना क्या, योगाभ्यास के बाद ऐसा अनुभव हो कि मुझ आत्मा ने बाबा से बहुत शक्तियां प्राप्त की, ऐसा अनुभव योगाभ्यास के बाद होना, उसको कहेंगे सफल योगाभ्यास करना। तो कैसी शक्तियां हमें मिलती है और कैसी शक्तियां हमारी खर्च होती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कैसी शक्तियां मिलती भाई, बाबा को याद करते तो कैसी शक्ति आत्मा में आती है बताइए, अनुभव होता है। बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो, मन मना भव का मंत्र जाप करो। मन क्या है भाई, मन तो संकल्प शक्ति है। जब हमारे संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं तो संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आती है और संकल्प के माध्यम से ही ऊर्जा खर्च होती है। मन क्या है, संकल्प शक्ति। बुद्धि के द्वारा बाबा के साथ तार जुड़ जाती है और मन संकल्प के माध्यम से शक्तियां आती है। अब तीन संकल्पों के द्वारा शक्तियां खर्च होती है, वो कौन से तीन संकल्प हैं? पहला है कर्म करने के लिए संकल्प, उनके द्वारा शक्तियां थोड़ी थोड़ी यूज होती है। दूसरा नकारात्मक संकल्प, उससे बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और तीसरा व्यर्थ संकल्प, जिससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, उस व्यर्थ के लीकेज के द्वारा शक्तियां बहुत नष्ट होती है। अभी हमें क्या करना है, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक में परिवर्तन करना है और व्यर्थ के लीकेज को बंद करने के लिए समर्थ संकल्प करते जाना है। तो धीरे 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 शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा और आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। भाई कितने वर्षों से बैटरी चार्ज कर रहे हैं बताओ, हैं जी, कितने वर्षों से योग कर रहे हैं बोलिए ना, 10 साल से। कितने साल से कर रहे हैं भाई, 8 साल से। कितने सालों से, 20 साल से। कितने साल से, 25 साल से। अभी तक बैटरी चार्ज नहीं हुई। मोबाइल की बैटरी 2 घंटे में चार्ज होती है और ये बैटरी चार्ज होती कि नहीं, इतने वर्ष लगते हैं भाई, क्यों लगते हैं, कारण क्या है बताओ, हैं जी। जितना शक्तियां कमा लेते हैं उतनी शक्तियां सारे दिन भर में यूज कर भी लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, जमा का खाता है नहीं, बैलेंस है नहीं। अमृत वेले योग किया, शाम को भी योग किया, थोड़ी शक्तियां भी जमा की, लेकिन सारे दिन भर में हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं अपने लिए, सेवा के लिए, औरों के लिए हजारों संकल्प चलते हैं, उसके द्वारा आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अभी थोड़ा समय बाकी है और थोड़े समय में आत्मा की बैटरी तेजी से चार्ज करना है, इसलिए इशारा दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, उससे क्या होगा, बहुत शक्तियां हम प्राप्त करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, खर्च थोड़ी होगी और जमा का खाता बैलेंस हमारे पास बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे बैटरी चार्ज होते 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 हम संपूर्णता के मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। साधारण योगाभ्यास से थोड़ी शक्तियां मिलेगी, अब थोड़े से काम नहीं चलेगा भाई, समझा। तो इसलिए अमृत वेले या नुमा शाम के समय हमें शक्तिशाली अभ्यास जरूर करना है। अब शक्तिशाली योग करना है उसके लिए क्या करना होगा बताइए, हैं जी? करना तो चाहते हैं, हम सभी करना चाहते हैं, बाबा के पास बैठते भी हैं, बाबा से कनेक्शन जुड़ भी जाता है, लेकिन शक्तियां बहुत अच्छी तरह से आत्मा अपने में ग्रहण करती रहें, उसका सीक्रेट क्या है, उसके लिए क्या प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, बोलिए। हाँ जी, उसके लिए मन की बैठक कैसी हो बाबा के पास बैठते समय, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो कभी भी हिचके नहीं, थोड़ा कभी कभी संकल्प आता है, बाबा तो पवित्रता का सागर है और मुझ आत्मा पर अपवित्रता के दाग हैं, कितने दाग हैं, तो मैं बाबा के पास बैठ सकती हूं या नहीं, थोड़ा सा मन में संशय आता है, मन कभी कभी खाता है, होता है भाई कभी कभी। तो हमें बाबा के पास बड़े ठाट से, बड़े मस्ती से बैठना है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं उसके कंधे पर बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाट से, बड़े मस्ती से हमें बैठना है। और दूसरी बात, बाबा ने हमें सजनी के रूप में स्वीकार किया है, सजनी कैसी भी हो उसको अपने साजन के पास बैठने का पूरा अधिकार होता है, होता है ना, इसलिए हमें बड़े ठाट से, बड़े मस्ती से बैठना है, कभी भी हिचकिचाहट हमारे मन में ना हो, तभी मिलन का मजा आपको आएगा, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी बाबा से मांगे नहीं, मांगना भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। माताएं क्या करती है अमृत वेले, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूं, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना बाबा, आपको तो कुछ कम होने वाला नहीं। नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं, इसलिए बाबा के पास बड़े मस्ती से बैठना है, अधिकारी रूप से। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं जो सारे संसार को, आत्माओं को बांट दूं तो भी नहीं कुटते वो, मैं क्या करूं इन खजानों का, वो तो सारे आपके लिए हैं, इसलिए अधिकारी रूप से बैठना है। और तीसरी बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो बाबा के पास बैठते समय मन की बैठक साधारण न हो, बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं साधारण आत्मा हूं, ऐसे स्वयं को समझेंगे तो आपको थोड़ी सी शक्तियां मिलेगी, क्योंकि आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत थोड़ा सा है, लेकिन शक्तियां बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करना है, शक्तिशाली याद की अनुभूति करना है, उसके लिए क्या करना है, बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ऐसे शक्तिशाली बैठक में बैठते हैं तो बाबा से हम बहुत शक्तियां ग्रहण करते हैं, ऑटोमेटिक वो शक्तियां प्रवाहित होती हैं, परिणाम स्वरूप ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास हमारा होता है। इसलिए इन तीन बातों पर हमें जरूर बैठना है। लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं, कई मुरली में स्पष्ट कहा है बाबा ने, पहले परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। क्यों भाई, क्या बात है, क्या जरूरत है, वो तो हमारा बाप है, उसको तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी याद कर सकते हैं। फिर भी बाबा कहते यथार्थ याद अर्थात परम धाम में मुझे याद करो। क्यों भाई, कारण क्या है इसके पीछे, तीनों लोगों में परम धाम ही एक ऐसा स्थान है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, कोई वहां आवाज नहीं है, कोई इधर उधर की वृत्ति नहीं है, एकदम पवित्रता का स्थान है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, तो वहां जब हम जाते हैं तो परमात्म मिलन का बहुत ही गहन अनुभव हमें होता है, कोई डिस्टर्बेंस वहां नहीं है, इस साकारी दुनिया में तो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमें परम धाम में बाबा के पास बैठकर योग करना है। उसके लिए बार बार हमारी बुद्धि परम धाम रूपी घर को अच्छी तरह से याद करते रहे, उधर बुद्धि खींची रहे। हमारा घर अमेरिका में आप गए, अभी आपका अहमदाबाद में घर है, भले पुराना है, और वहां अमेरिका में बहुत बढ़िया महल है, फिर भी आपको अहमदाबाद में या दिल्ली में जो मकान पुराना है वो आपको खींचेगा, भारत आपको खींचेगा। क्यों, क्योंकि जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है, शरीर बना हुआ है मिट्टी, वो आपको ऑटोमेटिक खींचती है। तो ऐसे मूल वतन हमारा असली रहने का स्थान है परम धाम। यहां तो हम खेलने के लिए आए, पहाड़ बजाने के लिए आए हैं, तो असली घर हमारा परम धाम है, तो वो हमें खींचे, उनके तरफ हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक जावे, ऐसा अनुभव हमें बढ़ाना है। और वैसे भी हम सभी रिटर्न जर्नी पर है, यहां तो पहाड़ बजे हमने, अभी क्या है, बाबा कहते रिटर्न जर्नी पर आप है, आपकी बुद्धि यहां से सूक्ष्म वतन में ले जाना है, सूक्ष्म वतन से परम धाम जाना है, ऐसी रिटर्न जर्नी पर आप है, तो अनुभव हमको ये बढ़ाना है। यहां रहते हुए भी बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सूक्ष्म वतन में करेंगे तो बुद्धि हमारी ऊपर जाएगी, सूक्ष्म वतन जाएगी, और उपराम जब तक नहीं बनते हैं तब तक ऊपर वाले राम को याद नहीं कर सकते हैं। उपराम होते ही बाबा के पास हमारी बुद्धि चली जाती है। इसलिए परम धाम रूपी घर से भी हमारा प्यार हो और परम धाम निवासी बाप से भी हमारा बेहद प्यार हो, क्योंकि जहां प्यार वहां तार बुद्धि की जुटती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। और प्यार किससे होता है भाई दुनिया में, हाँ जी, हाँ, जिससे हमें प्राप्तियां होती है उससे प्यार होता है। बाबा से इतनी प्राप्तियां होती, इतनी प्राप्तियां होती जो किसी व्यक्ति से, किसी आत्मा से नहीं हो सकती है। लेकिन क्यों प्यार नहीं होता है, क्योंकि वो प्राप्तियों को हम भूल जाते हैं। अब 21 जन्मों की बादशाही कोई कम बात है क्या, लेकिन उसको भूल जाते हैं तो उसके कारण बाबा की याद नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र का भी जाप करते रहो। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, काम करने के पहले सोचते हैं कि मुझे इससे मिलेगा क्या, सोचते हैं ना भाई, कोई भी काम शुरू करते हैं ना, ये करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। तो मध्याजी भाव इतना बड़ा लड्डू बाबा दे रहा है, ये लड्डू याद रहता है तो मन मना भोका जाप करने में भी हमारी रुचि बनी रहती है, कभी भी उसमें रुचि कम नहीं होती है। इसलिए बीच बीच में मध्याजी भाव के मंत्र का भी जाप करते रहें तो योगाभ्यास में बहुत हमारी रुचि बनी रहती है, समझा। इसलिए बहुत योग का आनंद हमें लेना है और फिर उसमें भी सारे दिन भर में फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। और जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, जैसे बाबा के घर में बैठते हैं तो फट से निराकारी स्थिति में स्थित होकर एक सेकंड में परम धाम की फ्लाइट मिल गई और बाबा के पास बैठ गए। अगर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं करेंगे, ईश्वरीय नशे का अनुभव नहीं करेंगे तो बाबा के घर में जाने के बाद भी 5-10 मिनट आपको उसके प्रभाव से खुद को न्यारा करने के लिए लगेगा, लेकिन जैसे बाबा के पास गए और एक सेकंड में बाबा के पास बैठ गए, फ्लाइट मिल गई, उसके लिए हमें सारे दिन भर में स्वयं को सेफ रखना है माया दुश्मन के सूक्ष्म वारों से, समझा। इसलिए क्या करना है, सेफ रहने के लिए क्या करना है, बेटंडी लग रही है, सेफ्टी के लिए आपने क्या किया, स्वेटर पहना, शाल पहनी, है ना, ठंडी से बचाओ। अभी माया की दुनिया है, माया के वार से सदा सेफ रहने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखना है। सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच आत्मा को पहना कर रखेंगे ना तो दुश्मन वार नहीं करेगा, वार करेगा तो भी उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो होशियार बाबा के बच्चे होते हैं वो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच पहनते हैं और युद्ध के मैदान में कर्म क्षेत्र में जाते हैं ताकि दुश्मन के वार से बचे रहे। आत्मा रूपी माँ के ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि, इन दोनों बच्चों को हमें सेफ रखना है, ये माँ का फर्ज है। माँ बच्चों को हेल्दी वेल्दी भी रखना है लेकिन सेफ भी रखना है। सेफ रखने के लिए क्या करना है, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखना है, समझा। इसलिए बहुत सुंदर योग के अनुभव हमें करते जाना है। यहाँ बाबा के पास हम आते हैं, क्यों आते हैं भाई, इतनी मेहनत करके इतना टाइम निकाल के, क्योंकि मुझ आत्मा को बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हो और वो अनुभव की पूंजी मेरी बढ़े, उसके लिए हम यहाँ आए ना, आए ना, इतना सब कुछ मेहनत करके आप यहाँ है ना, अनुभव करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अनुभव कब होगा आपको बताइए, हाँ जी, लक्ष्य रखेंगे तो अनुभव। जब तक अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तब तक कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी साल चलो। और जैसे अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, अलौकिक अनुभूतियों की खान आपको मिल जाएगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी। लक्ष्य टाइट हो और अनु बिंदु समझते रहे तो ऑटोमेटिक बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हमारे पास इकट्ठे होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनना है, आगे आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल अगर रहना है तो अभी से अपने को शक्तिशाली अनुभव की अथॉरिटी बनाना है, तभी तो हलचल में अचल रहेंगे ना। नहीं हो गए अनुभव हमारे पास तो क्या होगा, माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी, दुश्मन हमें ना चाहे, हम उसके हाथ के खिलौने हैं क्या? भगवान के हाथ बच्चे हैं, भगवान के पालना में पल रहे हैं। तो इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा की अचल अडोल स्थिति शांति स्तंभ के रूप में दिखाई देती है, ऐसे मुझे भी अचल अडोल स्थिति बनाना है। ओम शांति।